वेधवला पुस्तक 13 लेक्चर नंबर 16 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम सुतात्मने नमः नमो अरिहं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवताहु भुवने उमंगलं वो भवियजनाजिनवरस्सकमकमलजुवं जसकुलिसकलससत्य ससंक संक कुसाविलक्षणवरियम। यह श्री वीरसेन आचार्य की जेधोला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में ये जो संयमा संयम नाम का अर्थाधिकार अभी अनुयोग द्वारा चल रहा है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 124 पर आ गए। 124 यहाँ तो पहले ये बात हो रही है कि उपशम सम्यक से जो पांचवें गुणस्थान में आता है उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। उसका जो पूरा प्रोसेस जो है वो पहले दर्शनों की उपशम नाम के प्रकरण में आ चुका है। यहाँ वेदक सम्यक के साथ जो वेदक प्रायोग्य साधि मिथ्या दृष्टि जीव पांचवे में आएगा या चौथे वाला पांचवे में आएगा वेदक समय दृष्टि, उसकी बात। तो उसमें क्या होते, तो दो ही करण होते हैं, हाँ, अधक करण और अपूर्व करण। अधक करण के भी एक अंतर्मूर्त पहले से ही अनंत गुणी विशुद्धि होती चली जाती है प्रति समय। तो जब अपूर्व करण शुरू हो जाता है, अधक करण शुरू होता है, तो उसमें यथायुग जो कोई वहाँ विशेषता बताई अनंत गुणी विशुद्धि का बढ़ना वगैरह वगैरह, कहाँ कितनी विशुद्धि होती है अलग अलग जीवों की अपेक्षा, उसकी चर्चा कर दी मैंने। अपूर्वकरण से क्या क्या होता है, ये तो अनंत गुणी विशुद्धि तो बढ़ती बढ़ती है, स्थिति कांडक घात भी होता है, अनुभाग कांडक घात भी चालू हो जाता है। स्थिति मंदापसरण तो पहले से ही चला रहा था, वो तो बात यहाँ भी कंटिन्यू चलती है। एक यहाँ विशेषता क्या बताए कि गुणश्रेणी नहीं होती प्रथमोक्षम के पूर्व में मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही
गुणश्रेणी
की रचना होती है, ऐसी यहाँ नहीं होती। यानी जो अपूर्वकरण परिणाम अन्यत्र जहाँ होते हैं वहाँ गुणश्रेणी की रचना होती है, परंतु यहाँ वेदक के साथ वो संयमा संयम प्राप्त करने वाला है, इस पोजिशन पर गुणश्रेणी नहीं होगी। जिस समय संयमा संयम की प्राप्ति हुई यानी पांचवा गुणस्थान प्रकट होगा, तभी अपूर्व कर्म के पश्चात वाले समय तब उसकी गुणश्रेणी की रचना हो जाएगी। यानी वो संयमा संयम वाले जो विशुद्धि के परिणाम है उससे होगी। वो वेदक के साथ प्राप्त कर रहा है तो इसके कारण यहाँ गुणश्रेणी नहीं होगी, इतनी बात तो हमने देखी। अभी हम 124 पर आ गए हैं नीचे,
वो भी अवधि काल के ऊपर होगी ना,
क्या
गुणश्रेणी
रखना, गुणश्रेणी तो उदयावली के ऊपर।
उदयावली,
हाँ। यहाँ हम नीचे वो 36 नंबर का पॉइंट हम पढ़ेंगे, संयमा संयम गुण के महात्म्यवश गुणश्रेणी निर्जरा भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। यहाँ और क्या बात है, स्थिति कांड घात भी चलते रहते हैं, अनुभाग कांड घात भी हो गए, स्थिति बंधन भी होगा, परंतु ये नया यानी नए प्रमाण से हो जाएगा। अब तक जो हो रहे थे वो अपूर्वकरण के कारण हो रहे थे, उसका प्रमाण वहाँ से यहाँ का प्रमाण और कम होगा। स्थिति कांडक का आयाम भी छोटा होगा, अनुभाग कांडक का भी यथायोग्य कम होगा, और यहाँ स्थिति बंधापसरण भी घटेगा। और क्या होता है, तो यहाँ गुणश्रेणी की रचना शुरू हो जाती है। अपूर्वकरण में गुण संक्रमण भी होता है, वो भी यहाँ नहीं लिया। इवन वहाँ इवन प्रथमोपशम के काल में भी अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं होता, नहीं होता। कब होता है? अनिवृत्तिकरण में भी नहीं होता। वो तो प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से होता है गुण संक्रमण। मिथ्यात्व से अन्य दो प्रकृति तैयार होती है गुण संक्रमण द्वारा, परंतु अन्यत्र जहाँ जहाँ है वो गुण संक्रमण होता है। कब होता है? दर्शन मुनि की क्षपणा में वहाँ गुण संक्रमण चलता है, अनंतानुबंधी की विषय योजना में वहाँ गुण संक्रमण होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी का गुणित प्रमाण में संक्रमण चालू हो जाता है, वो अपूर्वकरण परिणाम से ही होता है। यानी अन्यत्र गुण संक्रमण होता है, प्रथमोपशम वाले को नहीं होता था वो तो उन्होंने बता दिया, यहाँ पर भी गुण संक्रमण की कोई बात नहीं आई। अब हम ये पढ़ रहे थे कि संयमा संयम गुण के महात्म्यवश, यानी संयमा संयम योग्य जो विशुद्धियां हो रही उसके कारण 123 पेज पर अभी संयमा संयम शुरू हो गया, अपूर्वकरण समाप्त हो गया, वही बात हुई थी ना। तो इसके कारण अपूर्वकरण के कारण नहीं होती है, क्योंकि वो उपशमने वाला कार्य नहीं है। यहाँ तो वेदक योग्य काल चल रहा है और वेदक हाँ कहीं भी है, या तो नहीं नहीं उतरने वाले की बात नहीं है। सादी मिथ्या दृष्टि पांचवें में जा रहा है या चौथे से पांचवें में जा रहा है अभी से, क्योंकि उतरने वाले के करण परिणाम की कोई बात ही नहीं है। करण परिणाम में तो उतरेगा ही नहीं, वो तो संकलेश में उतरेगा। तो यहाँ गुणश्रेणी निर्जरा भी यहाँ प्रारंभ हो जाती है। इस बात का कथन करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। पहले प्राकृत में सूत्र पढ़ेंगे हम। असंख्य जे समय पबद्धे उकड्डीयुण गुणश्रेणीय उदयावलीय बाहिरे रचेरी। नीचे क्या लिखा है फुटनोट? असंख्य जे समय पबद्धे उकड्डीयुण तो असंख्यज्य समय प्रबद्ध इति पाठ। अच्छा, असंख्यज्य नहीं लिखा, असंख्यज्य लिखा। अभी हिंदी में पढ़ेंगे। तथा असंख्यात समय प्रबद्धों का अपकर्षण कर, वो श के ऊपर अपहर लेंगे, अपकर्षण कर उदयावली बाह्य गुण श्रेणी की रचना करता है। उदय के समय से लेकर एक आवली काल तक जो निषेक पड़े उसको कहेंगे उदयावली। यानी कितने हैं निषेक? तो आवली प्रमाण, आवली में जितने समय है जगन युक्त संख्या उतने वहाँ निषेक है, उसको उदयावली करें। उसके ऊपर गुण श्रेणी की रचना होती है। यानी नीचे के आवली प्रमाण निषेक छोड़कर ऊपर गुण श्रेणी की रचना होती है ना, वहाँ गुणित प्रमाण में परमाणु दिए जाएंगे, कर्म परमाणु। वो कहाँ से आएंगे? ऊपर के निषेकों में से आएंगे। कैसे आएंगे? तो अपकर्षण के द्वारा आएंगे। तो अपकर्षण कितना होगा? तो असंख्यात समय प्रबद्धों का होगा। एक समय में प्रबद्ध में जितने परमाणु है अनंत होते हैं, उससे असंख्यात गुणे परमाणु प्रति समय नीचे नीचे आएंगे और वो गुण श्रेणी जिसको कहेंगे अंतर्मूर्त काल के जो निषेक है उसमें सबसे नीचे के निषेक में थोड़ा, फिर उससे असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात इस क्रम से दिया जाएगा। उसको कहते हैं गुण श्रेणी की रचना होती है। ये कहाँ से है? उदयावली के ऊपर। यथा संयमा संयम गुण को प्राप्त होने के प्रथम समय में ही उपरिम स्थितियों की द्रव्य स्थितियों के द्रव्य का उपरी मैंने ऊपर के स्थितियां ने निषेक, क्योंकि हमने देखा था ना वो तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेक पड़े हैं सारे, तो ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु छूटकर नीचे आ जाते हैं। तो कहते उपरिम स्थितियों के द्रव्य का यानी परमाणुओं का अपकर्षण करना यानी उसकी स्थिति घटाना, गुणश्रेणी निक्षेप करता हुआ। गुणश्रेणी का अर्थ होता है गुणित प्रमाणे श्रेणी यानी पंक्ति। मान लेते हैं 85 परमाणु नीचे आए तो पहले निषेक में एक दे गए, दूसरे में चार, तीसरे में 16, चौथे में 64, चार चार गुना दिए। यहाँ कितने गुना? असंख्यात गुना, असंख्यात गुना दिया जाता है। तो गुण श्रेणी निक्षेप करता हुआ उदयावली के भीतर असंख्यात लोक का भाग रहने पर जो भाग लब्ध आवे उतने द्रव्य को गोपुच्छाकार से निक्षिप्त कर। पहले में पहले ये ऐसी रचना है, इसमें कोई अंतर वगैरह की बात नहीं, क्योंकि प्रथम उपशम नहीं हुआ है। अब ऊपर के सभी निषेकों में से अपकर्षण होगा द्रव्य, प्रत्येक में से नीचे नीचे आता, तो जितना इतना पोर्शन नीचे आया मान लेते, तो उसको असंख्यात लोक का भाग देंगे, और जो एक भाग प्रमाण है वो नीचे जो उदयावली मान लेते, यहाँ से यहाँ उदयावली के चार निषेक है, उसमें इस तरह से नीचे ज्यादा और ऊपर कम। गुण श्रेणी में नीचे से ऊपर असंख्यात गुणा दिया जाता है, इसमें विशेष यानी चय से घटता हुआ दिया जाता है। अभी हम योग में देख रहे थे ना, नीचे ज्यादा ऊपर घटते है वर्गणा में, ऐसे यहाँ नीचे में जो ऑलरेडी वहाँ प्री एग्जिस्टिंग निषेक है ही है, उसमें जो ऊपर से जो दिया है वो एक एक चय से घटता घटता द्रव्य दिया, ये एक्स्ट्रा वहाँ एडिशन। असंख्यात लोक का इसको भाग दिया और एक भाग उदयावली में दिया, उसको गोपुच्छा कहते हैं। ये टेपरिंग है ना ऊपर, इसको गोपुच्छा, गोपुच्छ है ना, गाय की पूंछ, वो क्रम से छोटी छोटी होती चली जाती है, उसकी उपमा दी। उतने द्रव्य को गोपुच्छाकार से निक्षिप्त कर, 125 पर सेकंड लाइन हो गई थी, उसके बाद उदयावली के बाहर अनंतर स्थिति में यानी इमीडिएट ऊपर के निषेक में, अनंतर का अर्थ है अनंतर, अंतर छूटे बिना ऊपर की, असंख्यात समय प्रबद्धों का सिंचन करता है। अभी यहाँ जितना द्रव्य दिया है, इमीडिएट इसके ऊपर कितना द्रव्य एक्स्ट्रा दिया, असंख्यात समय प्रबद्ध पहले ही निषेक में, उसके ऊपर उससे भी असंख्यात गुणा, तीसरे में उससे भी असंख्यात गुणा, यहाँ थोड़ा दिया, थोड़ा भी कितना दिया, असंख्यात समय प्रबद्ध। अभी यहाँ तक ही क्रम से बढ़ा, क्रम से घटा, उसके ऊपर ये गुण श्रेणी है। अभी हम यहाँ केवल इतना ही दिखाएंगे, ऐसा ये गुण श्रेणी रूप से ऐसा बढ़ा, उसके ऊपर फिर टेपरिंग ऐसा दिया जाएगा। उदयावली में दिया, गुण श्रेणी में दिया, और फिर ऊपर भी दिया, पुनः उसके ऊपरी, उससे ऊपरी अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणे द्रव्य का सिंचन करता। इस प्रकार अंतर्मूर्त ऊपर जाकर, ये गुण श्रेणी की जो रचना है उसके कितने निषेक उसमें है, तो अंतर्मूर्त के जितने समय है उतने वहाँ निषेक है। अंतर्मूर्त तो काल का यूनिट है, और यहाँ हम कितने निषेकों में दिया, तो अंतर्मूर्त प्रमाण निषेकों में, इसका अर्थ क्या है, एक अंतर्मूर्त में जितने समय है, यहाँ एक एक समय का एक एक निषेक गिनेंगे, उतने निषेकों में यहाँ गुण श्रेणी रूप से द्रव्य दिया गया, यानी असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा। द्रव्य का सिंचन करना कहो, द्रव्य का निक्षेपण करना कहो, द्रव्य दिया है ऐसा कहो, एक ही बात है। इस प्रकार अंतर्मूर्त ऊपर जाकर गुण श्रेणी शीर्ष, शीर्ष यानी टॉप, माथा, सिर कहते ना, शीर्ष यानी जो लास्ट वाला निषेक होगा गुण श्रेणी में, उसको गुण श्रेणी शीर्ष कहेंगे। यहाँ तो एक ही निषेक को शीर्ष कह रहे हैं, कहीं कहीं अनेक निषेकों को भी शीर्ष कहने की पद्धति है, यहाँ हम एक निषेक की बात करें। जहाँ गुणश्रेणी रूप से दिया है उसका अंतिम निषेक है, उसको गुणश्रेणी शीर्ष कहेंगे। गुणश्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से, श्रेणी ने पंक्ति यानी नीचे असंख्यात जो दिया था उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा सिंचन करता हुआ जाता है। तदनंतर ऊपरी स्थिति में यानी गुण श्रेणी के ऊपर के स्थिति में असंख्यात गुणे हीन द्रव्य का सिंचन करता है। देखो यहाँ गुण श्रेणी के जो शीर्ष है उसमें इतना द्रव्य दिया एक्स्ट्रा, ये बाहर से देखा है वो एक्स्ट्रा है, यहाँ कितना दिया असंख्यात गुणा हीन दिया, इतना ही दिया, फिर ऊपर थोड़ा थोड़ा कम करते ऊपर तक ऐसे रचना हो। यहाँ उदयावली के बाद इसमें असंख्यात गुणा दिया, फिर असंख्यात गुणा गुण श्रेणी के टॉप तक दिया, फिर उसके ऊपर के निषेय में असंख्यात गुणा हीन दिया। नहीं ये गोल मैंने हाँ ऊपर का द्रव्य कितना लाया उसको बताने के लिए मैंने उदयावली में वैसे तो एक्चुअली वो उन्होंने नहीं, क्योंकि जितना ऊपर से लाते हैं ना उसमें से नीचे दोनों उदयावली में और गुण श्रेणी में मिलकर एक भाग देते हैं और बाकी बहुभाग ऊपर देते हैं, वो बात उन्होंने नहीं उठाई है। हाँ उन्होंने डायरेक्ट असंख्यात लोक का भाग अन्य कर्मों में
सभी कर्मों की बात है ना,
सभी कर्मों में जैसे दर्शन मुंह की उपशमना में तो क्या दर्शन होने का तो यहाँ पर भी सवाल नहीं है, तो यहाँ जो कुछ वहाँ आयु को छोड़कर साथ में अप्रत्यक्षानवरण भी है ना, उसका उदय चल रहा है, भले देशघाती रूप से होकर उदय में आ रहा है फिर भी उसका उदय तो है, उसमें भी ऐसी होगी, सब सब में चलेगी, जिसका उदय ही नहीं उसका सवाल नहीं है, उसकी बात नहीं लेना यहाँ अपना अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का तो उदय ही नहीं यहाँ पर, उसकी बात नहीं लेनी, बाकी सब में चले गए आयु को छोड़कर सब में, उसकी चर्चा अभी नहीं हो रही ना, अभी दर्शन होने में क्या हो रहा है उसकी अभी चर्चा ही नहीं है, यहाँ वेदक सम्यक को प्राप्त किया है, सम्यक प्रकृति का उदय चल रहे हैं और मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व तो अनुदय रूप से पड़े हैं। हाँ हाँ उसका विद्या संक्रमण चलेगा, परंतु उसमें गुण श्रेणी नहीं होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पर उन दोनों में नहीं होगी उसका विद्या संक्रमण, क्योंकि वेदक शुरू हुए ना। हाँ आपका प्रश्न था हाँ उदयावली में एक भाग असंख्यात लोक से भाग देकर एक भाग उदयावली में बहुभाग गुणश्रेणी ऊपर दिया वैसा उसका हिसाब अलग है उन्होंने नहीं बताया। हाँ पहले कितना द्रव्य नीचे आता है तो अपकर्षण भागार का भाग देके जितना है उतना नीचे
असंख्यात लोक से भाग देते
अब उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक भाग नीचे दिया जाता है गुणश्रेणी और उदयावली में मिलकर और बहुभाग ऊपर दिया जाता है, परंतु ऊपर तो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण नीचे का इसलिए हर एक के खाते में थोड़ा थोड़ा आता है, जो नीचे भाग दिया है उसको असंख्यात लोक का भाग देकर फिर उसमें से दो भाग कर बहुभाग और एक भाग गुणश्रेणी में बहुभाग नहीं
बराबर एक भाग का जो
हाँ एक भाग हमने दोनों में कितना दिया जाएगा उसको असंख्य हाँ उसके असंख्यात लोक का भाग दिया उसमें से एक भाग उदयावली में दिया और बहुभाग गुण श्रेणी में दिया, यहाँ असंख्यात लोक कहा
है असंख्यात लोक
यानी मूल मूल जितना दिया जा उसको असंख्य हम उस संदृष्टि में से नक्की करेंगे, आप देना ऊपर की देना आपकी देना हाँ आपने जो लाई है ना ये लब्धि सर सहमा सेम है उसमें डायरेक्ट भी होगा लब्धि सर में डायरेक्ट कथन भी होगा सहमा सेम है देश चारित्र लब्धि आप ही लेना हाँ मैं आपको कह रही थी हाँ हाँ पेज 150 में उसकी यहाँ बात है अभी उसमें कहा कितना द्रव्य देते हैं ये अल्प बहुत वही है यहाँ पर कल जो हमने देखा था ना अथ 145 पेज पर है। कितना द्रव्य देते हैं? हाँ, यहाँ 144 पर है। समय ज्ञान चंद्रिका उसमें से ही लिखा है 173 गाथा की टीका। हाँ देखो, अपूर्वकरण के अंत समय के अनंतरवर्ती समय में जीव देशव्रती होकर अपने देशव्रत का काल में आयु बिना अन्य कर्मों का सत्व द्रव्य उसको अपकर्षण भागार मात्र असंख्यात का भाग देकर एक भाग में असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य को ग्रहण कर, यानी कितना द्रव्य को अपकर्षण करता है तो असंख्यात समय प्रबद्ध। एक बात आगे लिखा है, उसको पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देकर बहुभाग ऊपरी तन में देना और एक भाग उसको असंख्यात लोक का भाग देकर वो उदयावली में देना और बहुभाग गुण श्रेणी में। देखो फिर से, जो टोटल द्रव्य है
उसको पल्ले,
टोटल द्रव्य को अपकर्षण भागार से भाग दिया तो कितना आया? तो असंख्यात समय पर बताया। हम देख लिखेंगे ना यहाँ पर सर्व द्रव्यों को डिवाइडेड बाय अपकर्षण भागहार। तो कितना द्रव्य हुआ? तो असंख्यात समय प्रबल। अब उसको पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया, यानी असंख्यात समय प्रबद्ध स असंख्यात लिखेंगे हम तो स असंख्यात डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यात भाग। ये किसमें दिया?
गुण
श्रेणी और उदयावली और स असंख्यात डिवाइडेड बाय पल्य का असंख्यात भाग और मल्टीप्लाइड बाय एक कम पल्य का असंख्यात भाग, यानी वो बहुभाग हुआ। ये ऊपरी तन में दिया। पल्य का असंख्यात देखो मैं लिख के बताऊं तुम्हें। पूरा टोटल जितना सर्व द्रव्य था, सर्व द्रव्य में से अपकर्षण किया, यानी सर्व द्रव्य को हमने अपकर्षण भागार ओ कहेंगे उसको, तो असंख्यात समय प्रबद्ध आ गए हमारे पास। तो असंख्यात आ गए। अब ये जो असंख्यात समय प्रबद्ध है, इतने द्रव्य का अपकर्षण हुआ। अब इस असंख्यात समय प्रबद्ध को पल्ल्य के असंख्यात भाग से भाग देंगे। नीचे पल्ले का असंख्यात भाग,
एक भाग उदय एक भाग उदय।
हाँ तो इसमें से क्या करना फिर?
ये द्रव्य
एक भाग उदयावली में, इतना ही द्रव्य उदयावली में दिया।
बाकी का द्रव्य
ऊपरी तन में कैसा दिया? इसको एक कम पल्ल्य के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो ये ऊपरी तन में दिया। ऊपरी तन में भी स असंख्या डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्या का भाग मल्टीप्लाइड बाय एक घाटी पल्ले का असंख्या का भाग, ये बहुभाग है। देख ये ऊपरी तन में दिया,
गुणश्रेणी में दिया ना?
नहीं, ऊपरी तन में दिया। अभी गुणश्रेणी का भाग निकालना है। गुणश्रेणी और उदयावली में कितना दिया उसके फिर असंख्यात लोग से भाग देंगे।
अच्छा जी,
ये ऊपरी तन में दिया, इतनी बात ख्याल में आई? अब जो नीचे जो दिया था इतना ही दिया था।
ठीक बात,
देखो इतना नीचे दिया था, इतने द्रव्य में दो डिवीजन होगी, एक उदयावली में और एक गुणश्रेणी में। अब इसको असंख्यात लोक का भाग देंगे, ये किस में चला जाएगा? उदयावली में। लिखना
ये उदय वाली विजय।
हाँ, पल्ले पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया था और अभी असंख्यात लोक से भी भाग दिया, वो उदयावली में। नहीं नहीं, अभी दिया हमने, ऊपरी तन में दिया, ऊपरी तन में। नहीं नहीं, वो उसमें कुछ कमी थी ये। हाँ, उसमें वो पल्ले के असंख्यात भाग वाली बात बीच में नहीं डाली थी हमने, वो रह गई। ये बात ख्याल में है ना? अभी उसका बहुभाग यानी क्या करेंगे हम? ऊपर असंख्यात लोक से गुणा करके उसके ऊपर वन माइनस करेंगे, ये बहुभाग हुआ। ये बहुभाग गुण श्रेणी में दिया, दिखता है क्या मंजूर है? असंख्यात लोक का भाग दिया और एक कम असंख्यात लोक से गुणा किया। हम हमेशा देखते हैं ना, पांच का भाग देंगे तो चार से गुणा करना तो हमें बहुभाग मिलता है, वैसे ही यहाँ पर। असंख्यात समय प्रबद्ध को पल्ले का असंख्यात भाग से भाग दिया था, असंख्यात लोक से भाग दिया था और गुणकार में असंख्यात लोक में एक माइनस करके उससे गुणाकार किया, ये गुण श्रेणी में दिया। यहाँ जो हमने देखा था असंख्यात लोक का भाग देकर, तो उन्होंने पहले वाले भागहार यहाँ नहीं बताए।
जो अपन जो दे रहे हैं यहाँ पर,
हाँ,
उल्टा कर दिया। यदि अपन हमेशा असंख्यात लोग का भाग पहले तो निकाला भी है, तो हम जैसे निकाले तो तुम यहाँ पर कर रहे हैं असंख्यात और पहले का दो भागा तो वही है और अपने वाला क्यों भागा है? यदि अगर मैंने अपेक्षण भागा का भागा किया, असंख्यात लोग का भाग दिया
और एक
भाग है उसको ऊपर जाते थोड़ा बड़ी किया, एक भाग बचा उसको पहले का असंख्यात का भाग दिया, वो एक भाग पहले को देने के बाद उनके उजाले में दिया और
बहु अपने
गुण श्रेणी में दिया। बरोबर, ये कहीं लिखा है उन्होंने
122। अभी क्या हुआ, भागहार बदल गया।
अभी भागहार को उल्टा है।
हाँ, पल्ले के असंख्यात भाग का भाग देने के कारण असंख्यात समय प्रबद्ध नीचे आए। पहले इतनी द्रव्य नीचे नहीं आता था। यहाँ जो उदयावली और गुण श्रेणी में मिलकर जो द्रव्य दिया वो बहुत ज्यादा है।
ये हो रहा है कि इसमें गुण श्रेणी निकल जाता है।
हाँ बरोबर, यहाँ बात की क्योंकि यहाँ भागर भागर उलट गया था। हाँ, तो इसको हम फिर पढ़ेंगे यथा से 124 की लास्ट लाइन। सेमा सेम गुण को प्राप्त होने के प्रथम समय में ही उपरीतन स्थितियों के द्रव्य का आकर्षण कर गुण श्रेणी निक्षेप करता हुआ उदयावली के भीतर असंख्यात लोक का भाग देने पर जो भाग लब्धावे उतने द्रव्य को गोपुच्छाकार से निक्षिप्त कर उसके बाद उदयावली के बाहर अनंतर स्थिति में असंख्यात समय प्रबद्धों का सिंचन करता है। पुनः उससे ऊपरी अनंतर स्थिति में असंख्यात गुणे द्रव्य का सिंचन करते हैं, दूसरे नीचे के। पुनः उससे ऊपरी अनंत स्थिति में असंख्यात गुणे द्रव्य का सिंचन करता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त ऊपर जाकर गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से सिंचन करता हुआ जाता है। तदनंतर ऊपरी स्थिति में असंख्यात गुणे हीन द्रव्य का सिंचन करता है। इसके बाद अतिस्थापनावली से पूर्व, अतिस्थापनावली का अर्थ ऐसा होता है जहाँ हम देते हैं हर एक निषेक में से द्रव्य अपकर्षित होकर नीचे आ रहा है, तो लास्ट वाला निषेक में से अपकर्षण करके कहाँ कहाँ दिया जाएगा? तो कहते उदय के समय से लेकर यहाँ तक, इसके नीचे की आवली छोड़कर इमीडिएट अपने नीचे के आवली में द्रव्य नहीं दिया जाए, इसलिए लास्ट वाले इसमें तो कहीं से भी द्रव्य नहीं आएगा ऊपर से, तो उसको कहेंगे अतिस्थापनावली। बाकी हर एक निषेक में जहाँ कहीं भी निषेक हो उसका द्रव्य कहाँ जाएगा? अपने एक आवली छोड़कर उसके नीचे सर्वत्र। परंतु जहाँ कहीं से भी नहीं, क्योंकि यहाँ जो है ना ऊपर से कहीं ना कहीं से इसमें तो आ ही रहा है, तो अपमोस्ट वाला है कि वो अतिस्थापनावली कहीं जिसमें आने वाला बिल्कुल नहीं, जाने वाला ही द्रव्य है, इसलिए उसको अति स्थापनावली कहकर अलग बताते हैं। वैसे हर एक निषेक के लिए अपनी अपनी अति स्थापनावली अपने नीचे होगी, हर एक की अपनी अपनी, परंतु यहाँ तो ये सर्वथा अति स्थापनावली है, उसमें से तो जाता ही है, उसमें आता नहीं है, उसको कहेंगे आय द्रव्य नहीं है, व्यय द्रव्य है।
तो पहले हमने देखा था कि
अति स्थापना में व्यय ही है ना, उसमें से जा रहा है, उसमें आ नहीं रहा, निक्षेप उसमें नहीं है। अभी यहाँ के लिए जहाँ उदयावली में भी अति स्थापना हो, वहाँ उसकी बात नहीं है।
तो पहले देखा था जो पांचवें गुणस्थान के ऊपर ही गुणश्रेणी निर्जरा होती है,
हाँ।
वो चौथे गुणस्थान में वो गुणश्रेणी निर्जरा नहीं लेनी है,
क्योंकि चौथे गुणस्थान में कंटिन्यूस वो नहीं
तो खाली अंतम होती है,
है। प्रथम उपशम के काल में उपशम ना करने वाला, और उसने जो गुणश्रेणी की है वो जब तक खिरेगी वो खिरेगी,
और वहाँ पे भी भागा
उसके बाद यदि वो क्षपणा करता है, अनंतानुबंधी की विसंजना करता है, उस काल में गुणश्रेणी होगी विशुद्धि के काल करण परिणाम, अदरवाइज गुणश्रेणी नहीं होगी, यानी चौथे में कंटिन्यूस गुणश्रेणी नहीं होगी। तो ये असंख्यात असंख्यात गुणा होता है, उसके वो ऊपर विशेषहीन विशेषहीन हो जाता है। इस तरह इस प्रकार का गुणश्रेणी निक्षेप यहाँ पर प्रारंभ किया, यह सूत्र के अर्थ का निश्चय है। ये बात यहाँ शुरू हो जाती है, गुणश्रेणी का निक्षेप अभी तो प्रारंभ हुआ है, जब वो उदय में आना शुरू हो जाएगा नीचे के अवली प्रमाण काल के बाद, तब उसके उस प्रमाण में खिरना भी चालू हो जाएगा। से काले तम चैव ठिरिखण्डयम्, तम चैव अनुभाग खण्डयम्, सो चैव ठिरिबन्धो, गुणश्रेणी असंख्येज गुणा। तदनंतर समय में, यानी यहाँ देश संयम ने पांचवें गुणस्थान का दूसरा समय, उस काल में क्या हो रहा है, वही स्थिति कांडक, क्योंकि कांडक शुरू किया तो अंतर्मूर्त तक चलेगा, वही अनुभाग कांडक वो भी चलेगा, और वही स्थिति बंद, क्योंकि एक बार विशिष्ट स्थिति बंद शुरू हुआ तो उसके अंतर्मूर्त तक उतना का उतना स्थिति बंद होते, हर समय ड्रॉप नहीं होता, उसका डिफरेंस कहाँ होगा, मात्र गुणश्रेणी असंख्यात गुणी होती है
प्रति समय।
पहले समय में जितना द्रव्य नीचे आया था उससे असंख्यात गुणा द्रव्य नीचे आएगा, और प्रत्येक निषेक में पूर्वज में जितना दिया था उससे भी असंख्यात गुणा दिया जाएगा। यहाँ स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक और स्थिति बंध में तो भेद नहीं है, क्योंकि वही कांडक वही वगैरह सब चल रहे हैं, क्योंकि प्रथम समय में आरंभ किए गए उन्हीं सब की अंतर्मूर्त प्रमाण उत्कीर्ण काल के भीतर अवस्थित रूप से प्रवृत्ति देखी, यानी उसका जो उत्कीर्ण काल है, स्थिति कांडक होने का जो काल है, स्थिति बंध का लगातार काल है, अनुभाग का जो है कांडकोत्तरण काल, उस एक अंतर्मूर्त से उतना का उतना उसका प्रमाण चलता है, जिसको अवस्थित कहते हैं। परंतु गुणश्रेणी अन्य प्रकार की होती है, एक ही समय में गुणश्रेणी अन्य प्रकार की होती का अर्थ क्या, क्योंकि प्रथम समय में अपकर्षित किए गए, ये शे हुए गशे नहीं गए, समय प्रबद्धों से असंख्यात गुणे समय प्रबद्धों का अपकर्षण कर, देखो दूसरे समय में असंख्यात गुणा द्रव्य नीचे आता है, दूसरे समय में गुण श्रेणी में निक्षेप देखा जाता है। अब यहाँ पर गुण श्रेणी निक्षेप क्या गलित शेष आयाम वाला होता है या अवस्थित होता है, यानी अभी ये जो गुण पहले समय में जो दिया ना, तो पहला समय बीत गया, तो यहाँ उदय का भी पहला समय बीत गया, तो यहाँ का जो गुणश्रेणी का एक निषेक उदयावली में प्रवेश कर गया, तो क्या अभी गुणश्रेणी ऐसी एक एक से कम हो जाएगी, क्या ऊपर का एक निषेक इसमें आ जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहे, यानी गुणश्रेणी क्या गलितावशेष है क्या अवस्थित है, ये प्रश्न पूछ रहे। इस बात का निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र आया, यहाँ कहते गुणश्रेणी निक्षेवो अवर्थित गुणश्रेणी तत्तिगो सेवा, गुणश्रेणी निक्षेप अवस्थित गुणश्रेणी होने से उतना ही होता है। इसका अर्थ गुणश्रेणी का नीचे का निषेक उदयावली में प्रवेश करेगा और ऊपरी संस्थिति का एक निषेक गुणश्रेणी रूप से, यानी उसमें असंख्यात गुणा रूप से द्रव्य दिया जाए। क्योंकि वो तो बाद में नष्ट होने वाली थी छपना में भी, क्योंकि हाँ वो फिर भी बाद में फिर भी
गलितावश्यक थी।
बीच में कुछ काल तक अवस्थित हो गई
थी।
यहाँ पर अवस्थित है क्यों? क्योंकि वो तो पांचों गुणस्थान तो चलता रहेगा और यहाँ गुणश्रेणी हमेशा बनी रहेगी। वहाँ कुछ विशिष्ट कार्य हो रहा था अंतर्मुख वाला, इसलिए वहाँ गलितावशेष रूप से लिया था। यहाँ ये तो पांचवें गुणस्थान में भी ये चलेगी बाद में। यानी नीचे अपकर्षित होने वाला द्रव्य भी असंख्यात गुणा हो जाता है और ये गुणश्रेणी क्या होती है? अवस्थित होने से उतना ही रहता है। गुणश्रेणी निक्षेप का अर्थ होता है जितने निषेकों में, मान लेते हम 10 निषेकों में दिया गुणित प्रमाण, तो उसकी संख्या 10 की 10 रहेगी। नीचे का उदयावली में चले जाएगा, ऊपर का एक उसमें आके मिलेगा।
तो रियल कार्य संयम के देश संयम के प्राप्त होने से होता है। ऐसे
हरेक का अपनी अपनी विशुद्धि से अपने अपने योग्य कार्य होता है। जैसे जब उपशमना हुई थी तब उसके योग्य कार्य वहाँ हुआ था। अब यहाँ तो देश संयम प्राप्त हुआ है तो यहाँ का कार्य यहाँ बताएंगे। तो ये कहते हैं कि गुणश्रेणी निक्षेप अवस्थित गुणश्रेणी होने से उतना ही होता है, यानी उतना ही उसका अंतर्मुख का प्रमाण उतना का उतना रहेगा। यतः यहाँ पर अवस्थित गुणश्रेणी है अतः उतना ही गुणश्रेणी निक्षेप होता है, यह सूत्र का अर्थ है। यानी यह अवस्थित है इस कारण गुणश्रेणी निक्षेप करते जितने निषेकों में गुणित प्रमाण में दिया जाता है उसका प्रमाण उतना ही रहेगा। प्रथम समय के गुणश्रेणी निक्षेप में से नीचे एक स्थिति के यानी एक निषेक का उदयावली के भीतर प्रविष्ट होने पर पुनः ऊपर अन्य एक स्थिति को अधिक करके यह जीव गुणश्रेणी विन्यास करता है नहीं निक्षेप करता है, उसमें डालता है। यह सूत्र का भावार्थ है। विशेषार्थ, यहाँ संयमासंयम भाव को प्राप्त हुए जीव के वो करना वो हुआ है। संयमासंयम रूप परिणामों के साथ एकांतानुवृद्धि रूप परिणामों के निमित्त से एक ऐसी ये परिणाम एक अंतर्मूर्त तक विशुद्धि अनंत गुणी अभी भी बढ़ रही है पांचवें गुणस्थान प्राप्त होने पर, और उन परिणामों के कारण यहाँ जो कार्य हो रहा है उसकी बात कर रही है। यहाँ योग की बात नहीं, विशुद्धि की बात चल रही है, क्योंकि यही शब्द योग में चल रहा है अभी एकांत अनुवृद्धि रूप। तो यहाँ तो विशुद्धि की बात है, पांचवें गुणस्थान प्राप्त होने पर यहाँ संयमासंयम के योग्य विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, हर समय अनंत गुणा होता है। उसके निमित्त से जो गुणश्रेणी रचना प्रारंभ होती है वह एक तो उदयावली के बाहर, ये बाहर हुआ बाहर, उपरितन समय से प्रारंभ होती है, और दूसरी बात क्या है? वह अवस्थित रूप स्वरूप होती है। इसलिए प्रत्येक समय में अधस्तन स्थिति के गलने से, अधस्तन नीचे वाली स्थिति यानी निषेक, नीचे का निषेक गल जाता है, उदय रूप होकर फिर जाता है। जैसे जैसे उदयावली से उपरीतन एक एक स्थिति उदयावली में प्रवेश करती है, गुणश्रेणी का नीचे का निषेक उदयावली में प्रवेश करेगा, वैसे वैसे प्रत्येक समय के गुणश्रेणी शीर्ष से उपरिम प्रत्येक स्थिति गुणश्रेणी विन्यास को प्राप्त होती रहती है। यानी अभी जो गुणश्रेणी शीर्ष था टॉपमोस्ट, दूसरे समय में ऊपर का एक निषेक उसमें आ गया और उसको भी हम गुणश्रेणी शीर्ष कहेंगे। इन्हें शीर्ष के ऊपर के एक निषेक में गुणित प्रमाण में द्रव्य दिया जाता है, यानी उसको गुण श्रेणी रूप से रचना हो जाती है। जैसे अन्यत्र गुण श्रेणी आयाम अंतर्मूर्त प्रमाण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। इतना आवश्यक है, अवश्य है, यह गुण श्रेणी आयाम अवस्थित स्वरूप है। अभी तो यहाँ पर वो अवस्थित है। यद्यपि संयमासंयम गुण का महात्म्य ही ऐसा है कि इस गुण के प्राप्त होने पर नियम से अवस्थित गुण श्रेणी का प्रारंभ हो जाता। परंतु यहाँ पर एकांतानुवृद्धि परिणामों के काल में होने वाला गुणश्रेणी निक्षेप पूर्व पूर्व समय की अपेक्षा उत्तर उत्तर समय में नियम से असंख्यात गुणित समय प्रबद्ध स्वरूप होता है। यह तो पिछले समय की अपेक्षा अगले समय की बात हुई। एक ही समय में अधस्थन स्थिति से गुणश्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक, क्या कहते हैं, एक समय से दूसरे समय में जो द्रव्य आता है नीचे वो असंख्यात गुणा, और एक ही समय में जो गुणश्रेणी के एक एक निषेक में दिया जाता है वो भी असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा। तो उत्तरोत्तर उपरीतन उपरीतन स्थिति में, यानी ऊपर ऊपर की स्थिति में असंख्यात गुणित क्रम से द्रव्य का निक्षेप होता है, शेष कथन सुगम है। ये जो हमने देखा था ना, इसमें जितना दिया है उससे असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, ये एक ही समय में इन सब में असंख्यात गुणा रूप से दिया। हाँ, ये जो नीचे आएगा तो नीचे इसमें से द्रव्य निकल तो नहीं जाएगा, तो ये नीचे नीचे आते चले जाएंगे, तो अगली काल के बाद यहाँ इतने असंख्यात समय प्रबद्ध यहाँ उदय में भी आते चले जाएंगे। परंतु उसमें जो नया दिया जाने वाला द्रव्य है वो इतना असंख्यात गुना नहीं दिया जाएगा, उसमें थोड़ा ही दिया जाएगा, मैक्सिमम तो यहाँ दिया जाएगा। एवं खंडेषु बहुषु गदेषु तदो अधापवत्त संजदा संजदो जायते। अभी तक इसको एकांत अनुवृद्धि संयमासंयम कहते, यानी अभी स्टीप राइज है उसमें विशुद्धि की, बाद में अभी बढ़ना रुक गया, यानी वो ऐसी स्टेडी कंडीशन आ गई, तो उसको क्या कहेंगे, अधा प्रवृत्त संयम या देश संयम। इस प्रकार बहुत स्थिति कांडकों के जाने पर, यानी कुछ काल बीतने पर, तत्पश्चात यह जीव अधा प्रवृत्त संयता संयत हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो वेदक वाला है ना, वेदक वाला है, प्रकृति भी थी और उसने उसके पहले अंतर्मूर्त में उतना विशुद्धि भी हुआ है और यहाँ प्राप्त किया है। वो तो श्रेणी में करते हैं, श्रेणी में करते हैं। हाँ, यहाँ उसकी जरूरत नहीं रही, थोड़े ही में उसका कार्य हो जाता है। उपशमनक के कार्य में जितना उसको कहेंगे ना अनिवृत्तिकरण की, वो उतने विशुद्धि की जरूरत पड़ती है, यहाँ उतने विशुद्धि की जरूरत नहीं है, थोड़े में उसकी प्राप्ति हो जाती है।
यहाँ पे इतनी विशुद्धि के साथ भी इसका देश का पना हो जाता है प्रत्यक्ष अनावरण का।
हाँ, और पहले हमने आपको याद होगा जब हमने देखा था ना कि वेदक सम्यक्त्व के साथ संयम प्राप्त करने वाले की उसकी विशुद्धि तो उपशम के साथ करने वाले से भी ज्यादा दी, क्योंकि अनुभाग का जघन्यपना हमने वहाँ घटित किया था, आपको याद होगा।
तो विशुद्धि वहाँ पे ज्यादा हुई और अनिवृत्ति
उतनी सेम हो जाती है ऐसे, यानी उसके उस करण की जरूरत बिना ही उसको उस प्राप्ति के योग्य परिणाम हो जाते, इतना लेना है इसमें और कुछ नहीं।
अपकरण और अनिवृत्ति करने क्या आवश्यक पावन है,
वो गुणश्रेणी वाली बात यहाँ नहीं होगी, बस गुणश्रेणी वाली बात यहाँ नहीं होगी। जैसे उपशम सम्यक्तो के काल, यानी एक है वेदक सम्यक्तो से पांचवा प्राप्त करने वाला और एक है उपशम सम्यक्तो के साथ पांचवा करने वाला। तो उपशम के साथ जो प्राप्त करता है उसमें वो गुणश्रेणी किस में, उसकी बात होगी, गुणश्रेणी वहीं से शुरू होगी।
हाँ,
यहाँ तो वो अंतरकरण करते हैं, यहाँ विसंयोजना जो कुछ है, वो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होते। ये बात जैसे गुणश्रेणी यहाँ हुई नहीं, अपूर्वकरण में भी नहीं हुई है, गुणश्रेणी तो नहीं हुई ना यहाँ पर।
जब श्रेणी आने के बाद, हाँ,
प्राप्त करने के बाद हुई, वो संयमा संयम के कारण हुई,
आवश्यक हुए। जैसे गुण संक्रमण नहीं हुआ था,
हाँ,
यहाँ पर गुण श्रेणी नहीं,
श्रेणी भी नहीं,
हाँ।
देखो उक्त कथन का तात्पर्य है कि संयमा संयम के ग्रहण के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल के अंतिम समय तक तो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ हजारों स्थिति कांडक, देखो कैसा अंतर्मूर्त होगा, हजारों स्थिति कांडक अनुभाग कांडक, क्योंकि एक एक स्थिति कांडक में हजारों अनुभाग कांडक हो गए, स्थिति बंधापसरणों को करता हुआ उस अवस्था में एकांतानुवृद्धि संहिता संयत कहलाता है। इसका नाम ही एकांतानुवृद्धि संहिता संयत। परंतु अब उस काल की समाप्ति होने पर, यानी ये जो विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ रही थी अब वो रुक गई, स्वस्थान विशुद्धि को प्राप्त कर, उसको कहेंगे स्वस्थान, अधः प्रवृत्त संहिता संयत संज्ञा के योग्य हो जाता है और उसका नाम अभी अधः प्रवृत्त संहिता संयत। पहले हमने ये प्रश्न आया था ना, मैं अधः प्रवृत्त संयत, संयत में भी ऐसा होगा, वो संयम प्राप्त होने पर अंतर्मूर्त तक एकांत अनुवृद्धि होगी, बाद में वहां पर भी अधप्रवृत्त संयत हो जाएगा। यहाँ तो संहिता संयत की बात कर रहे हैं, इसे चाहे अधप्रवृत्त संहिता संयत कहो या स्वस्थान संहिता संयत कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। एक होता है एकांत अनुवृद्धि संहिता संयत और ये स्वस्थान कहो या अधप्रवृत्त संहिता से, एक ही बात। इसलिए यहां से लेकर स्वस्थान के योग्य संकलेश और दो बार हुआ, संकलेश और विशुद्धि के परावर्तन को, परावर्तन है पलटते रहना, यह जीव आगमोक्त विधि से प्राप्त करता है ऐसा यह ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए यहाँ से लेकर स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात की प्रवृत्ति नहीं होती, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का अवतार कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जब ये पांचवें गुणस्थान में आया है तो गुणश्रेणी की रचना होती है, वहाँ कितना द्रव्य दिया जाता है वो हमने देखा। अब कहते हैं कि ये कब तक चलेगा ऐसा,
प्रवृत्त कर सकता है,
हाँ, यानी एकांत अनुवृद्धि वाला जो है विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ने का कार्य अंतर्मूल तक चलेगा, तब तक क्या होगा, हजारों स्थिति कांड घात हो गए, उससे भी हजारों गुणा अनुभाव कांड घात हो गए, स्थिति बंधापसरण भी यथायोग्य हो गए। इसको क्या कहेंगे, एकांत अनुवृद्धि संहिता संयत। इसके बाद स्थिति कांड घात अनुभाव कांड घात वगैरह वो बंद हो जाते हैं और इसको क्या कहेंगे, अध प्रवृत्त संहिता संयत।
ठीक है, प्रतिभा
का दूसरा नाम क्या है, स्वस्थान संहिता संयत।
ये प्रतिभा को धारण करता है जो जीव,
प्रतिमा के प्रतिभा,
प्रतिभा प्रतिमा धारण करता है,
प्रतिमा धारण करता है,
तो वहाँ पे भी ये अध प्रवृत्ति कहलाएगा।
नहीं, वो यथायोग्य विशुद्धि उस समय उसकी बढ़ेगी, अभी क्या कहा की बात चल रही है, पहले प्राप्त करते ही क्या था उसकी बात, अब उसके बाद उसका स्वस्थान हो जाएगा। अब पांचवें गुणस्थान के योग्य जो कुछ यहाँ लिखा ना, संकलेश और विशुद्धि के जो कुछ कम बढ़ना, वो चलेगा। आप क्या कहते हैं? यथा योग्य प्रतिमा तो पहले ही है, यथा योग्य क्यों? पांचों गुण स्थान तो एक प्रतिमा से भी प्राप्त होगा कि उसकी द्रव्य प्रतिमा तो है, उस किसी ने अधिक ली होगी वो भी हो सकता है, परंतु प्राप्त होने के बाद जो आगे बढ़ने का, आगे की प्रतिमा लेने का जो परिणाम होगा उसमें यथा योग्य विशुद्धि बढ़ेगी, उसकी यथा योग्य बढ़ेगी। यहाँ तो संकलेश और विशुद्धि दोनों का परावर्तन अभी हमने पढ़ा ना एक वाक्य,
परावर्तन होता है विशुद्धि और संकलेश।
दूसरी लाइन में क्या कहा? इसे चाहे अध प्रवृत्त संहिता संयत कहो या स्वस्थान संहिता संयत कहो, दोनों का अर्थ एक है। और यहाँ से लेकर स्वस्थान के योग्य संकलेश और विशुद्धि के परावर्तन को यह जीव आगमोक्त विधि से प्राप्त करता है। वहाँ तो विशुद्धि बढ़ रही थी, मात्र बढ़ रहा था, यहाँ बढ़ेगा भी कम भी होगा। वो अध प्रवृत्ति वाली बात नहीं लेना, वो अनुकृष्टि वाली बात यहाँ नहीं लेनी। नीचे नीचे के कभी संकलित होगी, क्योंकि यदि संकलेश विशुद्धि नहीं मानेंगे तो यहाँ यथा योग्य जो अन्य प्रकृतियों का जैसे साता वेदनी बंदेगी क्या असाता बंदेगी? बंदेगी ना, वो तो छठे तक बनती है, तो उसके योग्य संकलेश हो गए तभी बंदेगी कि नहीं बंदेगी? पांचवें गुणस्थान वाला होते हुए भी कभी संकलेश कभी विशुद्धि उसकी होती चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, प्राप्ति होते ही अंतर्मूर्त तक विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ी, उसको एकांत अनुवृद्धि संहिता संहित का, वो एक अंतर्मूर्त बीत जाने के बाद अब वो स्टेडी हो गया, अब कभी संकलेश हो गया कभी विशुद्धि होगी, उसको स्वस्थान कहा या अध प्रवृत्त कहा? बताया ना केवल सूत्र में, हजारों स्थिति कांडकों के जाने पर तत्पश्चात यानी एकांत अनुवृद्धि के बाद इमीडिएटली वो अध प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ और क्या होती है? तो स्थिति कांडक घात यहाँ रुक जाते हैं, अनुभाग कांडक घात का भी कार्य रुक जाता है। ये बात बताने के लिए अभी आगे का सूत्र कहेंगे। यहाँ पर अधापवत्त संजदा संजदस्य स्थिति घातो व अनुभाग घातो वा नस्ति, अध प्रवृत्त संयत के स्थिति घात और अनुभाग घात नहीं होता, क्योंकि करण संबंधी विशुद्धि के निमित्त से हुआ प्रयत्न विशेष एकांत अनुवृद्धि विशुद्धि के अंतिम समय में नष्ट हो गया। करण परिणामों से जो बात शुरू हुई थी बाद में एकांत अनुवृद्धि से भी विशुद्धि बढ़ती गई, करण तो रुक गए थे परिणाम, परंतु ये विशुद्धि बढ़ने के कारण वो कार्य वहां पर भी चालू था, अब ये नष्ट हो गया। इसलिए यहाँ से लेकर स्थिति घात और अनुभाग घात प्रवृत्त नहीं होते, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। गुण श्रेणी चलेगी, गुण संक्रमण अभी वैसे वो तो दर्शन मोह का तो यथा योग्य विद्या संक्रमण चलेगा, यहाँ जो संक्रमण होते वो तो चलेगी ही, जिस गुणस्थान के योग्य जितना संक्रमण, परंतु ये संयमा संयम के कारण होने वाले संक्रमण अलग से नहीं लिया, गुण संक्रमण नहीं होगा यहाँ, गुण संक्रमण यहाँ नहीं होगा। कहाँ पर
एकांत अनुवृत्ति वाले
नहीं हुआ था, यहाँ गुण संक्रम की बात ही नहीं रही,
उसके पश्चात भी एक
और स्थिति बंधा भी वो भी बंद, गुण श्रेणी चल। ये विशेषात पढ़ेंगे, देखो करण जन्य विशुद्धि को निमित्त कर जो प्रयत्न विशेष होता है वह एकांतानुवृद्धि रूप विशुद्धि के काल तक ही पाया जाता है। वो किस निमित्त से शुरू हुआ था? करण परिणाम के कारण। इसलिए स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात रूप कार्य विशेष उसी काल तक पाए जाते हैं। इसके आगे संहिता संयत के परिणाम होते हैं, वे एकांत अनुवृद्धि रूप विशुद्धि को लिए हुए न होकर अध प्रवृत्त रूप ही होते हैं। अध प्रवृत्त का अर्थ है यह अर्थ दिया संयत का, संयता संयत के योग्य, उसके योग्य शब्द डाला क्योंकि ऐसे संकलेश नहीं होगे जो पहले गुणस्थान के योग्य। तो संयता संयत के योग्य कभी संकलेश रूप कभी विशुद्धि रूप परिणामों का होना, इन परिणामों को प्राप्त संहिता संयत जीव की दो संज्ञाएं हैं, अध प्रवृत्त संहिता संयत और स्वस्थान संहिता संयत। इन परिणामों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इनको निमित्त कर यह जीव स्थिति कांडक घात आदि कार्य विशेष करे, पर ऐसे जीव के गुणश्रेणी निर्जरा का निषेध नहीं है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। यानी उसकी गुणश्रेणी निर्जरा चलती रहेगी। अब स्वस्थान संहिता संयत के स्थिति घात और अनुभाग घात के प्रतिषेध के अवसर पर जिसका अवसर प्राप्त है ऐसा अन्य जो भी कार्य विशेष है उसका कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। यदि संजमा संजमादो परिणाम पच्चयेन निगदो पुणोवि परिणाम पच्चयेन अंतो चाहिए अतो हुआ है ना अंतो मुहूर्तेन आनीदो संजमा संजमम परिवज्जयि तस्सविन अस्थि ठिरिघादो वा अनुभाग घादो वा। देखो यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया क्या कहते, यदि वह परिणामों के निमित्त से संयमा संयम से गिर गया और फिर भी परिणामों के निमित्त से अंतर्मूर्त के काल के द्वारा वापस लाएगा, इमीडिएटली एक लघु अंतर्मूर्त में वापस उसने पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया, गिरा तो सही पर इमीडिएटली उसको प्राप्त हुआ, तो कहते ऐसे संयमा संयम को प्राप्त होता है तो उसके भी स्थिति घात और अनुभाग घात नहीं होता,
करण परिणाम नहीं हुआ।
हाँ, करण परिणाम भी नहीं हुआ, दो करण भी नहीं हुए, पहले ही उन्होंने कंडीशन बताई थी। वेदक योग्य वाला मिथ्या दृष्टि लिया, वो कैसा है, बहुत बड़ा अंतर्मूर्त या और लंबा काल उस गुणस्थान में रहा हुआ था, चौथे के लिए भी वही कंडीशन बताई थी। और यहाँ कौन सा लिया है, पांचवे गुणस्थान वाला है, गिरा और बिल्कुल छोटे में छोटे अंतर्मूर्त वापस सहमा सेन को प्राप्त, उसकी बात ये और बताएंगे स्पष्ट करके। जो जीव संहिता संयत होकर कुछ ही काल तक रहा, पुनः परिणामों के निमित्त से असंयत होकर स्थिति और अनुभाग में वृद्धि न कर, उसकी वृद्धि नहीं हुई थी स्थिति और अनुभाग में क्योंकि उसकी वृद्धि होने के लिए उसके संकलेश परिणाम ज्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि ऊपर से गिरते ही कुछ काल तक तो संकलेश नहीं होते, उसकी विशुद्धि रहती है कुछ काल तक। तो कहते स्थिति और अनुभाग में वृद्धि न कर फिर भी अतिशीघ्र अंतर्मूर्त काल के भीतर ही परिणाम प्रत्ययवश, प्रत्यय ने कारण, परिणामों के कारण संयमा संयम को प्राप्त होता है, उसके भी स्वस्थान संहिता संयत के समान स्थिति घात और अनुभाग घात नहीं होता। यानी ना उसके एकांत अनुवृद्धि बताई है ना ही उसके करण बताए। हाँ, पहला या चौथा दोनों लिए, हाँ दोनों लिए, केवल असंयत हुआ इतना ही बताया, असंयत हुआ है नहीं, पहला भी हो सकता है चौथा भी हो सकता है। फिर पढ़ती मैं इसको। जो जीव संहिता सहित होकर कुछ ही काल तक रहा, पुनः परिणामों के निमित्त से असंयत होकर यानी चौथे में गया, पहले में गया, स्थिति और अनुभाग में वृद्धि न कर फिर भी अतिशीघ्र अंतर्मूर्त काल के भीतर ही परिणाम प्रत्ययवश यानी परिणामों के कारण सेमा सेम को प्राप्त होता है, उसके भी स्वस्थान संहिता संहित के समान स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता, क्योंकि स्थिति वृद्धि और अनुभाग वृद्धि के बिना संयमा संयम को प्राप्त होने वाले जीव के तत्प्रायोगिक विशुद्धि के संबंध बिना करण परिणामों का होना असंभव तत्प्रायोगिक विशुद्धि के संबंध बिना करण परिणामों का होना असंभव है। यहाँ पर परिणाम पच्चेन ऐसा कहने पर जो तीव्र विराधना का कारण है, ऐसे बाह्य पदार्थ का संपर्क हुए बिना तत्प्रायोगिक संक्लेश परिणामों से युक्त अंतरंग कारण के द्वारा यानी मात्र कर्मों के कुछ उदय के कारण ऐसा ले सकते जीवादि पदार्थों को दूषित न कर अधस्तन गुणस्थान में जाकर फिर भी बाह्य कारण निरपेक्ष तत्प्रायोगिक विशुद्धि के साथ मंद संवेग रूप परिणाम के द्वारा ही सेमा सेम को प्राप्त कराया गया है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? अत्यंत तीव्र विराधना नहीं हुई है जिसके कारण वो तो मिथ्यात्वादी में जाकर बहुत लंबा काल तक रहेगा भी और अधिक बंद भी करेगा, ऐसा नहीं हुआ है। बस वह गिरकर नीचे आया और तत्काल वो ऊपर के गुणस्थान में चढ़ेगा, तो वहाँ कोई करण होने की जरूरत नहीं, करण परिणाम नहीं होगी, बिना करण के होगी।
जीवादि पदार्थ को दूषित न कर वो सात तत्व का
यानी सात तत्व संबंधी ऐसा कोई तत्व श्रद्धा में गड़बड़ी नहीं हुई है, फिर भी वैसे उसके विशुद्धि कम हुई है कहो संकलेश हुए तो नीचे आए हैं। देखो विशेषार्थ
जो हो सकता है
अभी हम विशेषार्थ पढ़ेंगे पहले फिर हम आपकी चर्चा करेंगे। जो जीव अध प्रवृत्त करण और अपूर्व करण पूर्वक संहिता संयत होकर तीव्र विराधना की कारणभूत बाह्य सामग्री का सन्निधान हुए बिना, ये तीव्र विराधना के कारणभूत क्या क्या हो सकते हैं?
बाह्य कारण बताए हैं,
बाह्य कारण तो गुरु आदि का कहेंगे, अन्य किसी का संग कहेंगे, अन्य जो कुछ बाह्य संकलेश परिणाम के कारण ऐसा देखेंगे हम, ये बाह्य कारण तीव्र विराधना की जिससे सम्यक और सीमा से हम दोनों छूट जावे ऐसी तीव्र विराधना, तो उसके बिना वही तो बता रही है। हाँ, तत्प्रायोग यानी कौन से गिरने के लिए ली, हाँ जिसके कारण वो गिर गया है, वही तो बता रहे हैं। बाह्य सामग्री नहीं है वहाँ, बाह्य तीव्र विराधना हो ऐसा कोई बाह्य निमित्त वहाँ नहीं है, मात्र संकलेश परिणाम के कारण अधस्तन गुणस्थान को प्राप्त हुआ है।
यह जीवादि पदार्थों को दूषित न करके बताया है तो वो पहले गुणस्थान में नहीं जा सकता है। असह्यत बताया है पर ये उसकी श्रद्धा में तो कहीं खोट नहीं आई है, सात तत्वों के बारे में तो उसकी तो असह्यत तो खाली चौथा गुणस्थान ही ले सकते हैं।
देखो फिर भी न तो उसकी जीवादि पदार्थों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति ही हुई है, अभी उसके कुछ यथायोग्य अंदर गड़बड़ी हुई है वो हुई है, अनंतानुबंधी का या नीचे के गुणस्थान योग्य उसका अगर उदय हो जावे उसका अर्थ क्या है, तो उसमें दोष दिखाने की प्रवृत्ति ही देखो उसकी जीवादि पदार्थों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति ही हुई
नहीं हुई
न तो उसकी जीवादि पदार्थों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति हुई और न ही उसे तीव्र विशुद्धि के बाह्य कारणों का समागम ही प्राप्त हुआ, मात्र उसका अतिशीघ्र लघु अंतर्मूर्त काल के भीतर बिना बाह्य कारण के सहज ही ऐसा मंद संवेग रूप परिणाम हुआ। पहले तो गिरने के लिए बाह्य सामग्री नहीं थी, अब कहते हैं पांचवें गुण स्थान के प्राप्त होने योग्य भी बाह्य कोई सामग्री के बिना ही उसने प्राप्त किया, ये बात बताए यहाँ लिखा ना। हाँ देखो, उसे तीव्र विशुद्धि के बाह्य कारणों का समागम ही प्राप्त हुआ, नहीं हुआ न तो हुआ क्या ना, न पहले डाला उन्होंने, मात्र उसका अतिशीघ्र लघु अंतर्मूर्त काल के भीतर बिना बाह्य कारण के सहज ही ऐसा मंद संवेग रूप परिणाम हुआ जिससे वह पुनः संयमा संयम गुण को प्राप्त हो गया। तो ऐसे जीव के भी स्वस्थान संहिता संयत के समान स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात रूप कार्य विशेष नहीं होते। यहाँ जो मंद संवेग रूप परिणाम होने का निर्देश किया है और उसे बाह्य कारण निरपेक्ष कहा है, इससे यह अर्थ सुतराम सफल फलित होता है कि सभी कार्य बाह्य कारण सापेक्ष ही होते हैं, ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है। अंतरंग निमित्त से यानी यथा योग्य कर्मों का वैसा जीव के परिणाम हुए का अर्थ क्या, कर्मों का वैसा उदय होगा। यानी उसके लिए बाहर कोई कारण बना ये ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, अंतरंग में कर्म का उदय ले, कारण की बात है ना। वैसे तो उपादान तो रहेगा ही रहेगा, परंतु यहाँ कारण की चर्चा चल रही है। अब स्वस्थान विशुद्धि से गिरे हुए संहिता संयत के जिस प्रकार स्थितिघात और अनुभागात नहीं होते, क्या इस प्रकार गुणश्रेणी निर्जरा भी संभव नहीं है या संभव है, ऐसा पूछने पर उसका निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। जाव संजदा संजदो ताव गुणश्रेणी समय समय करेगी, ये नियम बताए। किंतु जब तक संहिता संयत है तब तक समय समय में गुण श्रेणी को करता, जब तक संहिता संयत होकर रहता है तब तक समय समय में असंख्यात समय प्रबद्धों का अपकर्षण कर गुण श्रेणी निर्जरा करता है। वहाँ उसका निषेध नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी भले उसने स्थिति कांड घात और अनुभाग कांड घात तो नहीं किया था और डायरेक्ट उसके पांचवा गुणस्थान प्राप्त तो हुआ था एक लघु अंतर्मूर्त में, फिर भी वहाँ गुणश्रेणी का कार्य तो चलेगा। शंका, ऐसा होता है इसका क्या कारण है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि जब तक संयमा संयम गुण नष्ट नहीं होता तब तक संयमा संयम गुणश्रेणी निमित्त तक गुण श्रेणी निर्जरा की प्रवृत्ति में कोई बाधा नहीं उपलब्ध होती। इसलिए संहिता संयत गुण श्रेणी निर्जरा का जघन्यकाल अंतर्मूर्त है। ये निर्जरा का जघन्यकाल अंतर्मूर्त क्यों है, क्योंकि कोई जीव संहिता संयत में कितने काल तक रहता है, मिनिमम तो अंतर्मूर्त, तो जब तक रहेगा तब तक गुण श्रेणी निर्जरा होगी, इसलिए उसका काल भी अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। मंजू बहन ऐसा क्यों कहा, हाँ क्योंकि कोई जीव संयमा संयम को प्राप्त करेगा तो कब करेगा, 8 साल के बाद। कौन से जीव की बात कर रहे हैं, मनुष्य की, बहुत अच्छा था मनुष्य की। और तीन समय बोलो अंतर्मूर्त, यहाँ वेदक समित्व की बात है, वो समूर्षण जीवों को तो अंतर्मूर्त में हो सकता है। तो क्या इस काल में गुणश्रेणी निर्जरा करता हुआ संकलेश के काल में और विशुद्धि के काल में सर्वत्र ही सामान्य रूप में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज का अपकर्षण कर समय समय में गुणश्रेणी करता है, या क्या संकलेश और विशुद्धि में परिवर्तन करने वाले उक्त जीव के संकलेश काल में घटता हुआ और विशुद्ध काल में वृद्धिंगत गुणश्रेणी निक्षेप होता है, इस प्रकार इस पृच्छा के निराकरण करने के लिए आगे के सूत्र का विन्यास है। क्योंकि हमें तो ये प्रश्न हो सकता है कि गुण श्रेणी रूप से जो नीचे अपकर्षण होता है तो संक्लेश और विशुद्धि में उसका प्रमाण क्या उतना ही रहता है, क्या कुछ विशेषता होती है? हाँ, गुण श्रेणी तो रहेगी, परंतु जो उसमें अपकर्षण होकर गुण श्रेणी में जो द्रव्य दिया जाता है क्या वो उतना ही होगा कि कम अधिक होता है, उसकी बात यहाँ बताओ।
अंतर्मूर्त काल तक वो नीचे गया तो भी उसकी
गुण श्रेणी तो वहाँ रही, क्योंकि उसके अंतर्मूर्त में ही उसने प्राप्त किया, उसको वहाँ अपकर्षण होकर गुण श्रेणी रूप से देने का कार्य नहीं होगा, गुण श्रेणी निक्षेप नहीं होगा। जो निषेक बने वो तो गुण श्रेणी के बनेंगे, जितने नीचे उदयावली में आ गए वो तो खिर जाएंगे, अधिक मात्रा में भी खिरेंगे, उसके पूर्व ही फिर दोबारा प्राप्त करेगा तो वहाँ की गुण श्रेणी फिर दोबारा हो जाएगी। अब ये जो प्रश्न है ना कि संक्लेश को प्राप्त होने पर भी गुण श्रेणी में उतना का उतना द्रव्य दिया जाता है क्या, उसकी बात अभी करेंगे। विशुद्धंतो भी असंख्येज गुणम वा संख्येज गुणम वा संख्येज भागोत्तरम वा असंख्येज भागोत्तरम वा करेगी संकलित संतो एवं चेव गुणहीनम वा विशेषहीनम वा करेगी। विशुद्धि को प्राप्त हुआ भी उक्त जीव प्रति समय असंख्यात गुणे संख्यात गुणे संख्यात भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक प्रदेश पुंज का गुण श्रेणी में निक्षेप करता है, जिसको हम चतुस्थान वृद्धि कहेंगे, अनंत वाली बात नहीं लेना है। तथा संक्लेश को प्राप्त हुआ उक्त जीव इसी प्रकार से असंख्यात गुणाहीन संख्यात गुणहीन संख्यात भागहीन या असंख्यात भागहीन प्रदेश पुंज का गुण श्रेणी में निक्षेप करता है। गुण श्रेणी में कितना द्रव्य दिया जाता है उसमें वृद्धि या हानि होती है, जहाँ विशुद्धि बढ़ रही है तो वहाँ अधिक द्रव्य दिया जाएगा, कितनी मात्रा में विशुद्धि बढ़ रही है उस पर है निर्भर। तो कभी असंख्यात का भाग ही अधिक होगा, कभी संख्यात का भाग अधिक होगा, कभी संख्यात गुणा होगा, कभी असंख्यात गुणा हो जाएगा, और जब संक्लेश हो रहा है तो उल्टे में हानि के रूप में रहेगा। देखो एकांतानुवृद्धि, हाँ ये उसका उत्तर है। हाँ वेरिएशन कितने रूप में है? चतुस्थान रूप में। विशुद्धि के काल में वृद्धि रूप है चतुस्थान वृद्धि, और संक्लेश के काल में चतुस्थान हानि। एकांतानुवृद्धि काल के भीतर प्रति समय अनंत गुणे वृद्धि रूप परिणामों के कारण, परिणाम अनंत गुणा था, समय समय में असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण कर, और द्रव्य कितना अपकर्षण होता था? असंख्यात गुणा। ख्याल में है रेफरेंस? मैक्सिमम वहां भी असंख्यात गुणा का ही लिया था, परिणामों में अनंत गुणा लगाया, क्योंकि परिणाम हम अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं, और यहाँ द्रव्य जो है असंख्यात समय प्रबद्ध को भी असंख्यात गुणा करो, अनंत गुणा तो नहीं कर सकते उससे, है ना? तो असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण कर गुण श्रेणी निक्षेप करता है, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा प्रकार संभव नहीं, क्योंकि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है तो जो अपकर्षित द्रव्य है वो असंख्यात गुणा बढ़ेगा। परंतु स्वस्थान संहिता संयत विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ छह प्रकार की वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुए, अभी ये छह प्रकार की वृद्धि परिणामों में समझना, विशुद्धि विशुद्धि को प्राप्त होता हुआ छह प्रकार की वृद्धि, यानी ये छह प्रकार की वृद्धि विशुद्धि में लेना। हाँ वही तो, वहाँ चार प्रकार तो परमाणु की संख्या में लिया, नहीं नहीं विशुद्धि में प्रदेश पुंज लिया,
नहीं ऊपर चार प्रकार में प्रदेश पुंज लिए, यहाँ पे विशुद्धि में अनंत वा भाग और अनंत गुणा भी विशुद्धि में बढ़ेगी।
हाँ, पर क्या है वही तो, एकांत अनुवृद्धि में क्या हो रहा था, विशुद्धि अनंत गुना बढ़ गई। सत्संग वाले की क्या हो गई,
सत्संग प्रतीत हो गई,
उसके भी कभी कभी अनंत गुना बढ़ेगी, तभी तो असंख्यात गुना द्रव्य नीचे आएगा। किसमें चतुस्थान होगी, वो विशुद्धि में है, और जो परमाणु की संख्या में चतुस्थान ही होगा यहाँ पर।
एकांत अनुवृद्धि में जो वृद्धि बताई थी द्रव्य की, वो
असंख्यात गुणा ही बताई,
एक ही वृद्धि,
एकांत एक ही वृद्धि थी असंख्यात गुणा,
और यहाँ पे चार वृद्धि बता दी।
नहीं नहीं, छह परिणामों में बताई। देखो एकांत अनुवृद्धि में परिणामों में अनंत गुणा एक ही वृद्धि बताई, परिणामों में, और द्रव्य में असंख्यात
गुणा
बस। संस्थान में जहाँ विशुद्धि होती है तो परिणामों की बात है, उसमें षट्स्थान हो सकते हैं, परिणाम कभी अनंतवा भाग बढ़ गए, कभी अनंत गुणा भी बढ़ गया, छह पॉसिबल है। तो उसमें द्रव्य का बढ़ना कितना हो सकता है, चार स्थान। 48 नंबर से पढ़ेंगे, एकांत अनुवृद्धि काल के भीतर प्रति समय अनंत गुणे वृद्धि रूप परिणामों के कारण, ये परिणाम की बात चल रही है, परिणाम अनंत गुणा है, और उसके कारण समय समय में असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण कर, द्रव्य असंख्यात गुणा होगा, जहाँ विशुद्धि अनंत गुणा है वहाँ द्रव्य असंख्यात
गुणा ही होगा,
गुण श्रेणी निक्षेप करता है, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा प्रकार संभव नहीं, क्योंकि वहाँ तो अनंत गुणा ही विशुद्धि बढ़ती है। परंतु स्वस्थान संहिता संयत ये जो विशुद्धि को प्राप्त होता है, तो किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो कई छह प्रकार की वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुए, ये विशुद्धि में छह प्रकार हो सकते हैं। विशुद्धि के परिणाम जो है वो बढ़ते हैं, विशुद्धि कितनी बढ़ सकती है, तो छह प्रकार से बढ़ सकती है, तथा आकर्षित होने वाले द्रव्य की चार प्रकार की वृद्धि के कारणभूत परिणामों से यथासंभव परिणमन करता हुआ। द्रव्य में वृद्धि कैसे होगी, चार प्रकार, असंख्यातवा भाग अधिक संख्यातवा भाग अधिक संख्यात गुणा अधिक असंख्यात गुणा, चार ही प्रकार ऐसे परिणामों से यथासंभव परिणमन करता हुआ परिणामों के अनुसार ही गुण श्रेणी निक्षेप का आरंभ करता है, ये बात नक्की होगी, जैसे परिणाम उतना गुण श्रेणी का निक्षेप, कितना द्रव्य ऊपर से नीचे लाता है वे विशुद्धि के अकॉर्डिंगली होगा। संकलेश को प्राप्त होता हुआ भी इसी प्रकार छह हानि रूप से परिणामों के संबंध को अनुभव करता हुआ, यानी अभी उसके जो संकलेश जो है, तो यहाँ परिणाम क्या हो रहे, हानि रूप हो रहे। विशुद्धि में हमने विशुद्धि बढ़ती हुई देखी, अब यहाँ विशुद्धि का घटना कहो या संकलेश का बढ़ना कहो, चार प्रकार की हानि द्वारा गुण श्रेणी रचना करता है। परंतु गुणश्रेणी आयाम सर्वत्र अवस्थित ही होता है, ये बात महत्वपूर्ण है। गुणश्रेणी में दिया जाने वाला द्रव्य कम अधिक होगा, परंतु जितने निषेकों में गुणश्रेणी बनी है वो उतनी की उतनी रहती है। संकलेश के काल में कम द्रव्य आएगा उसमें, विशुद्धि के काल में अधिक आएगा, परंतु जितना आएगा वो गुणित प्रमाण ही में ही दिया जाएगा। गुणश्रेणी तो है ही ना, संकलेश के काल में भी गुणश्रेणी रूप से रचना चली रही है, फर्क कितना हुआ, थोड़ा द्रव्य उसमें मिला, जितना कुछ मिला वो तो गुणश्रेणी रूप से दिया कि नहीं दिया, गुणश्रेणी कार्य क्या गुणित प्रमाण में दे दिया। पहले ज्यादा आता था अब कम आ गया,
तो भी गुणित,
तो भी जितना आया उसमें गुणित प्रमाण में दे दिया। विशेषार्थ, जो जीव करण परिणाम पूर्वक संयत होता है उसके अंतर्मूर्त काल तक एकांतानुवृद्धि रूपी विशुद्धि होती है, जो प्रति समय अनंत गुणी वृद्धि रूपी होती है, अतः उसके अनुसार समय समय में असंख्यात गुणे द्रव्य का अपकर्षण करो, आकर्षण हुए ना, अपकर्षण करके ये प करना रह गया, अपकर्षण कर
के बदले प करके,
हाँ उसी को प कर दो ना,
मात्रा को प कर दो।
संयता संयत जीव गुण श्रेणी निक्षेप करता है, किंतु जो स्वस्थान संहिता संहित है उसकी विशुद्धि, अभी यहाँ उसके नाम बताएं, अनंत भाग वृद्धि, ये विशुद्धि में बता रहे, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि के भेद से छह प्रकार के। अतः उसके जिस समय जिस प्रकार के विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं उसके अनुसार वह जो गुण श्रेणी निक्षेप करता है वह चार प्रकार का होता है। कोई गुण श्रेणी निक्षेप असंख्यात गुण वृद्धि रूप होता है। गुण श्रेणी निक्षेप यानी गुण श्रेणी में जो डाला जाता है ना द्रव्य, दिए वाला द्रव्य, देने वाले द्रव्य। कोई गुण श्रेणी निक्षेप संख्यात गुण वृद्धि रूप होता है। कोई गुण श्रेणी निक्षेप संख्यात भागहानि रूप होता है और कोई गुण श्रेणी निक्षेप असंख्यात भाग हानि चाहिए।
नहीं नहीं वृद्धि चाहिए ना, क्योंकि चार प्रकार हो तो गुण से
सर
वृद्धि चाहिए चारों जगह।
विशुद्धि रूप परिणाम इसके अनुसार वो गुण श्रेणी कहते हैं
गुण श्रेणी
असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि,
संख्यात
भाग वृद्धि चाहिए,
संख्यात भाग वृद्धि चाहिए।
मैंने आगे वाला करेक्शन बताया, संख्यात भाग वृद्धि रूप होता है और कोई गुण श्रेणी निक्षेप असंख्यात भाग वृद्धि रूप होता है। संख्यात भाग हानि के बदले वृद्धि चाहिए। संख्यात भाग वृद्धि, हाँ असंख्यात भाग वृद्धि, बराबर है,
बराबर है वृद्धि के।
तो हानि को हमने वृद्धि किया तीसरी लाइन में, संख्यात भाग वृद्धि किया हानि के बारे में,
वृद्धि करना है
संख्यात भाग हानि लिखा है ना, तो संख्यात भाग वृद्धि कर देना।
ये विशुद्धि विशुद्धि वाले परिणाम है
क्योंकि ये बढ़ रहे हैं ना। देखो देखो विशुद्धि में क्या हो रहा है, छह प्रकार की वृद्धि हो रही है। तो गुण श्रेणी निक्षेप में क्या होगा, चार प्रकार की वृद्धि होगी,
असंख्यात गुण वृद्धि,
असंख्यात गुण, संख्यात गुण, संख्यात भाग और असंख्यात भाग, हर एक के आगे वृद्धि वृद्धि लगा। करेक्शन किया नितिन भाई, कहाँ किया करेक्शन, नीचे से कौन सी लाइन, किसे यह तो स्वस्थान संहिता संयुक्त के विशुद्धि की अपेक्षा कथन हुआ, यह तो विशुद्धि की बात है। संकलेश की अपेक्षा विचार करने पर वह भी यानी अभी संकलेश में यानी परिणामों में बात बता रहे हैं, छह बताएंगे, अनंत गुणहानि, असंख्यात गुणहानि, संख्यात गुणहानि, संख्यात भागहानि, कॉमा लगाना, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि के भेद से छह प्रकार का होता है। भेद से छह प्रकार का होता है। अतः उसके जिस समय जिस प्रकार का संक्लेश परिणाम होता है, ये परिणामों के छह भेद बताए, उसके अनुसार वह जो गुण श्रेणी निक्षेप करता है वह भी चार प्रकार का होता है। कोई गुण श्रेणी निक्षेप असंख्यात गुण हानि रूप होता है, कोई संख्यात गुण हानि रूप होता है, कोई संख्यात भाग हानि रूप होता है और कोई असंख्यात भाग हानि रूप होता है। यहाँ बराबर है सर, इतना अवश्य है गुण श्रेणी में जिस द्रव्य का निक्षेप होता है वह कम हो या अधिक हो, परंतु गुण श्रेणी आयाम सर्वत्र अवस्थित रूप से एक समान ही होता है। ये बात महत्वपूर्ण, गुण श्रेणी आया मैंने जितने निषेकों में वो दिया है अंतर्मूल का प्रमाण, वो तो अवस्थित था, वो उतना का उतना रहता। हाँ हाँ, जिस समय जैसे परिणाम के अनुसार कम ज्यादा द्रव्य वहाँ दिया जाता है, परंतु होगा वो गुण श्रेणी रूप, हम कहते ना कि वो तो पांचवें गुणस्थान वाला है, युद्ध भी करेगा या अन्य भी कुछ कार्य करेगा, तो उस समय तो उसके संकलेश होगी कि नहीं होगी, शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, सामायिक में बैठा है, तो विशुद्धि होगी, तो उसके गुण श्रेणी में जितना द्रव्य दिया जाता है वो कम अधिक होगा। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा स्वस्थान संहिता संयुक्त के गुण श्रेणी निक्षेपगत विशेषता का ज्ञान कराकर अब संक्लेश भार से व्याप्त जो जीव संयमासंयम से पतित होता हुआ स्थिति और अनुभव को बढ़ाकर पुनः तत्प्राग्य काल के द्वारा संयमासंयम ग्रहण के सम्मुख होता है, उसकी प्ररूपणा किस प्रकार की होती है? इस तरह इस प्रकार की आशंका के होने पर निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार है। अब ये सूत्र कल ही पढ़ेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा ले सो। मैं